होशे अध्याय नौ, होशे अध्याय नौ पद एक से लेकर तीन तक। हे इसराइल, तू देश देश के लोगों की नाई, आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हरेक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे ना तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और ना कुंड के दाक मधु से, और नए दाक मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे, परंतु एप्रेम मिस्र में लौट जाएगा और वे अशूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। यहां वो अशूरों द्वारा उनके बंदी बनाए जाने और ले जाए जाने की तथा शेष रहे लोगों के मिस्र पलायन की भविष्यवाणी देता है। होशे अध्याय नौ पद चार से लेकर नौ तक। वे यहोवा के लिए दाक मधु का अर्ध ना देंगे और ना उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने के लिए ही होगी। वो यहोवा के भवन में ना आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा की उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यनाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे, और मिस्री उनकी लोथें इकट्ठी करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मन भावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में जड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इसराइल ये जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े दोष के कारण भविष्यत वक्ता तो मूर्ख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरेगा। एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है, भविष्यत वक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वो अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। परमेश्वर उन पर दोष आरोपण करके दंड की घोषणा करते हुए कहता है, होशे अध्याय 9 पद 10। मैंने इसराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। यहां इसराइल राष्ट्र को अंजीर वृक्ष की उपमा दी गई है। योवेल अध्याय 1 पद 7 और यरमिया अध्याय 24 में भी ये उपमा दी गई है। तुम्हारे पूर्वज प्रथम अंजीर के वृक्ष के से थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मती 24 अध्याय 32 पद में यीशु योएल और यरमिया का ही संदर्भ दे रहा है। अतः आप एक प्रश्न पूछेंगे, यदि इसराइल अंजीर का वृक्ष है जिसका पुनर्जीवन 1948 में निकलना आरंभ हो गया, तो उस पीढ़ी को भविष्यवाणियां पूरी होने तक समाप्त नहीं होना था, तो फिर उनका अंत हो रहा है क्यों, जबकि कलीसिया अब भी है? हमें तो 7 वर्ष पूर्व ही चले जाना था। इस विषय में अनेक विचार हैं। पहला, कि इसराइल राष्ट्र का पुनर्जीवित होना मई 1948 में माना जाता है। दूसरा विचार यह है कि एक पीढ़ी 40 वर्ष की मानी जाती है। तीसरा यह कि कलीसिया मसीह यीशु के फिर से आने के 7 वर्ष पूर्व उठा ली जाएगी। यदि मसीह यीशु 1981 में नहीं आया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये विचार निराधार है। मेरा अपना विचार तो यह है कि ये पृथ्वी इस अवस्था में अधिक दिन कैसे काट रही है। आज संसार में अनेक ध्यान देने योग्य घटनाएं घट रही है। अफगानिस्तान में रूस का प्रवेश कोई कुछ नहीं कर पाया। ईरान में देखिए, यदि मेरा भरोसा प्रभु पर नहीं होता तो मैं या तो किसी गुफा की खोज करता कि सब समाप्त होने तक उसमें छिप जाऊं, या किसी दूरस्थ टापू में नारियल जमा करता और मछलियां पकड़ता जब तक कि सब कुछ धुआं नहीं हो जाता। मेरा विश्वास ना तो मनुष्य में है ना कि मनुष्य की शक्ति में, मेरा विश्वास प्रभु में और उसके वचन में है। मैं परमेश्वर के वचन में संसार का विनाश तब तक नहीं देखता जब तक कलीसिया यहां है। अतः मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख देता हूं। ये तो निश्चित है कि हम उस पीढ़ी के अंत तक पहुंच रहे हैं और अंजीर को अंकुरित होते देख रहे हैं। मेरे विचार में पद 10 और मती 24 में समानता नहीं है, क्योंकि मती 24 में अंजीर का वृक्ष इसराइल राष्ट्र है। परमेश्वर ने उन्हें जंगल की दाख माना था। जब वे जंगल में थे तब उन्हें वहां अंगूर मिले, जो एक प्यासे मनुष्य के लिए जीवनदायक वस्तु है। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें बहुत तारो ताजा और अच्छा माना। होशे अध्याय 9 पद 10 में आगे लिखा है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर, जहां तक उपासना का विषय है, ये आराधना अन्य जातियों में सबसे अधिक व्यभिचार से पूर्ण थी। होशे अध्याय 9 पद 10 से लेकर 12 तक, अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। ए प्रेम का वैभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा, ना तो किसी का जन्म होगा ना किसी को गर्भ रहेगा, और ना कोई स्त्री गर्भवती होगी, चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहां तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी ना बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय हाय है उस मनुष्य पर जिसके जीवन से परमेश्वर जा चुका है। होशे अध्याय 9 पद 13 से लेकर 17 तक, जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रेम को भी मन भावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बाल बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे। तू क्या देगा यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं और स्तन सूखे रहें? उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रेम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल ना लगेगा, और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरेंगे। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। वे आज भी अन्य देशों में प्रवासी हैं। परमेश्वर के वचन के साक्षी इतिहास और संसार दोनों है। निश्चय ही हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम तेरी सुने। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम एप्रेम और यहूदा के पापों का अनुसरण करके मूर्ति पूजा को कोई स्थान प्रदान ना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करना कि हम सांसारिकता और धन के भ्रम में पड़कर और अभिलाषाओं में फंसकर अपनी फलोत्पादक क्षमता को अवरुद्ध न होने दे, परंतु हे प्रभु हम तेरी स्तुति के निमित्त फल लाएं। यीशु के नाम में आमीन।